धवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए सुवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण ओए समुत्तीर्णये जिनेणमिहुं वेयण महाहियारम् विविहियारम् परुएमु। आचार्य श्री जयसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम के चौथा खंड है, उसका नाम है वेदना, और उसमें हमारा वेदना अनियोग द्वार चल रहा है। इस दसवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 60 पर हम आगे हुए, 60। देखो, हम कल विशेषार्थ पढ़ रहे थे 49 पृष्ठ से लेकर। योगस्थानों संबंधी यहाँ चर्चा चल रही है। हमने देखा 3 प्रकार के योगस्थान होते हैं। भव के पहले समय में, भले वो विग्रह गति वाला हो या रुजु गति से गया हो, उसको उपपाद योग होता है, जो सबसे जघन्य है। हाँ, उसमें भी रुजु गति से जाने वाले के उत्कृष्ट होता है और मोड़ से जाने वाले को जघन्य होगा। उसमें भी एक एक के जितने विशिष्ट जो 14 जीव समास है, उनमें एक एक जीव समास में जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद होते हैं। उपपाद में भी, एकांत वृद्धि में और परिणाम योगों में भी। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक एकांत वृद्धि, यानी उपपाद के बाद दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक एकांत अनुवृद्धि योग होता है। प्रति समय असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना बढ़ता है। उसके बाद परिणाम योग चालू हो जाता है, वो मरण तक वही चलता रहता है। उसमें भी 4 प्रकार की वृद्धि हानि होती रहती है। असंख्यात गुना वृद्धि भी होती है, असंख्यात गुना हानि भी होती है, और संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि हानि दोनों होते रहते हैं। अभी यहाँ जो ये बातें बताई है कि द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग परिणाम योग स्थानों में ही हम उनकी एक पंक्ति में रचना दिखाएंगे, क्योंकि योग वियोग मध्य क्या है हमको उसको समझना। तो द्विन्द्रिय पर्याप्त जीवों का जो जघन्य परिणाम योग है, उससे लेकर थोड़ा अधिक तो दूसरा योग स्थान कहेंगे, तीसरे थोड़ा अधिक तीसरा योग स्थान, थोड़ा अधिक चौथा योग स्थान, ये थोड़ा अधिक भी उसका फिक्स परिणाम प्रमाण है। तो ये थोड़ा अधिक अधिक करते करते एक योग स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते संगी पंचेंद्रियों का जो उत्कृष्ट योग स्थान है, वहां तक एक पंक्ति में हम उनकी रचना दिखाएंगे, नीचे से ऊपर तक जघन्य से उत्कृष्ट। एक बात हो गई। अब इसमें जो जघन्य, जो सबसे जघन्य जो योग स्थान है, और उसके ऊपर के कुछ योग स्थान, वो लगातार 4 समय तक उसका अवस्थान हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि 4 समयों तक रहे, वो एक समय में भी पलट जावे और जघन्य की तरफ है, उससे असंख्यात गुना बढ़ जाए, ये हो सकता है, परंतु अधिक से अधिक 4 समय तक रह सकते हैं। तो ऐसे स्थान कितने हैं, तो असंख्यात है, जिसका प्रमाण है जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण। उसके ऊपर के कुछ स्थान, वो भी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, लगातार 5 समय तक रह सकते, परंतु वो उनसे असंख्यातवे भाग प्रमाण हो गए। फिर 6 समय तक, 7 समय तक, 8 समय तक रहने वाले, प्रत्येक जो है उसका प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग ही है, परंतु 8 समय लगातार रहने वाले योग स्थान कम है, उससे असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा वो जगत श्रेणी का जो प्रमाण है असंख्यातवा भाग, वो असंख्यात गुणा वो योग स्थान अलग अलग है। अभी हमने नीचे की ओर देखा, अब ऊपर की ओर, इसको जहाँ 8 समय वाले जितने योग स्थान है जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, उन सबको हम कहेंगे ये यवमध्य, योगस्थानों को वो यवमध्य कहेंगे। उसके ऊपर के जो योगस्थान है वो भी उत्कृष्ट की तरफ वाले हैं। तो फिर सात समय तक लगातार रहने वाले, छह वाले, पांच वाले, चार वाले, फिर और तीन समय तक लगातार और दो समय तक लगातार वाले, वो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा उनका प्रमाण है। फिर भी सारे कितने हैं तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। इसको कहते योग यवमध्य रचना। उसमें काल की अपेक्षा ये योग स्थानों को मध्य में जो पाए जाते हैं आठ समय तक, वो सबसे कम है, परंतु काल की अपेक्षा वो बड़े हैं। यानी वो योग का जो बीच वाला मोटा ब्रॉड जो हमने देखा था प्रमाण, वो काल की अपेक्षा है, परंतु संख्या की अपेक्षा वहाँ योगस्थानों की संख्या कम है। और दोनों ओर योगस्थानों की संख्या असंख्या गुना होती है, और काल सात सात समय, फिर छः छः समय, पाँच पाँच समय, इस तरह से नीचे भी और ऊपर भी। यह हमने इतनी विशेषता देखी थी। अब साठ पृष्ठ पर आना, देखो फिर पढ़ते हैं ये चौथी लाइन लास्ट, वहां से फिर पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन लेंगे तो अच्छा पक्का हो जाएगा। ये परिणाम योगस्थान द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योगस्थानों से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योगस्थानों तक क्रम से वृद्धि को लिए हुए है। यानी उसमें योग ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा करते करते सबसे अंत। इनमें आठ समय वाले योगस्थान सबसे थोड़े होते हैं। सबसे थोड़े फिर भी उनका प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है। इनसे दोनों पार्श्व भागों में यानी नीचे की ओर ऊपर की ओर स्थित सात समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित छह समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित पांच समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित चार समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। अब आगे क्या वाक्य देखो, इनसे तीन समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। पर यहाँ दोनों पार्श्व भागों में ये शब्द नहीं डाला, ये ऊपर की ओर ही होगी उत्कृष्ट की तरफ वाले। और उनसे भी दो समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। अब ये जो असंख्यात का प्रमाण कितना है, कितने असंख्यात गुणे होते हैं, तो कहते पल्ले के असंख्यात पे भाग गुणा होते हैं। सारों का प्रमाण कितना है, जगत श्रेणी का असंख्यात का भाग, उसमें से सबसे छोटा जो है प्रमाण वो आठ समय वालों का है, उससे पल्ले के असंख्यात पे भाग गुणा सात वाले, उससे पल्ले के असंख्यात पे भाग गुणा छः वाले, उससे पल्ले के असंख्यात पे भाग गुणा पाँच वाले, फिर चार वाले, तीन वाले, दो वाले, ये सब योग स्थान। अभी पुस्तक में से पढ़ रही हूँ, चार पाँच छ सात आठ, फिर सात छ पाँच चार तीन और दो समय वाले होने से ग्यारह भागों में विभक्त है। यानी हमने जो एक पंक्ति बताई थी नीचे से ऊपर तक, द्विन्द्रिय के जघन्य से लेकर संगी पंचेन्द्रिय के उत्कृष्ट तक, उसके ये ग्यारह भेद हो गए। सबसे जो बीच वाला जो आठ समय वाला जो है वो छोटा है, दोनों ओर असंख्यात गुणा योगस्थान उसमें होते हैं। हो होगा ना, अभी द्विन्द्रिय का जघन्य है वो नहीं होगा, एकदम जघन्य नहीं होगा, पर चार समय में तो असंख्यात स्थान है, पंचेन्द्रियों को चार समय वाले स्थान हो गए, क्योंकि उसमें जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान है, तो पंचेंद्रियों का जघन्य उसमें आ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कहा कभी कि पंचेंद्रियों में चार समय वाले जघन्य वाले होते ही नहीं, पांच समय वाले, महाबंद में तो हमने देखा था, नहीं याद नहीं है, क्लैरिटी करो, परंतु महाबंद की बात याद है कि नहीं है, जघन्य बंध जो है चार समय तक हो सकता है, बहुत जगह हमने वो डिराइव किया था काल के प्रकरण में। यानी जो जघन्य प्रदेश बंध की बात जब आई थी अलग अलग कर्मों की, उसमें लगातार उसका काल अंतर वगैरह जो बातें देखी थी उसमें वो बात हमने पढ़ी थी। यानी वो संगी पंचेंद्रियों के भी हो गए, क्योंकि जघन्य नाम का एक स्थान नहीं है, चार जगन्य वाला भले एक हो, परंतु जगन्य की ओर के श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण अलग अलग योग स्थानों को चार समय तक रहने वाले है। वो ऊपर भी चार समय वाले है, परंतु उत्कृष्ट की तरफ वाले है। हम यहाँ जगन्य की तरफ वाली बात देख रहे थे, यानी संगी पंचेंद्रिय में भी उसमें यथा योग्य स्थान होगे, यानी उसमें ऐसी कंपैरिजन करेंगे ना, द्विंद्रिय के जगन्य से पंचेंद्रिय का जगन्य कितने गुणा है, इस तरह से। देखो यहां तक हो गई अपनी बात कल की, ग्यारह में भागों में विभक्त है। अतः समय की दृष्टि से इसकी यवाकार रचना हो जाती है। आठ समय वाले योग स्थान मध्य में रहते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में यानी दोनों साइड्स में सात समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में, दोनों पार्श्व भागों ने वो हम एक सीधी लाइन है ना, वर्टिकली देखना है दोनों भागों में, ऐसे आड़ा दो भाग नहीं करना है। सेंटर की एक हमने पूरी एक लाइन बताई थी और उसके दोनों भागों में हम देख रहे थे। हाँ, तो ये दोनों भागों में हमने देखे, आठ समय वाले होते हैं, सात समय वाले होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में छह समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में पांच समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में चार समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं, फिर आगे के भाग में क्रम से आगे के नहीं ऊपर की ओर तीन और दो समय वाले योग स्थान प्राप्त होते हैं। इनमें से आठ समय वाले योग स्थानों की यानी उन स्थानों को ही यव मध्य कहेंगे। यव मध्य संज्ञा है। यव मध्य से पहले के योग स्थान थोड़े होते हैं और आगे के योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ योग स्थान, यानी जो आठ समय वालों के जो नीचे की ओर जघन्य की ओर वाले जो है सात वाले छह और वाले पांच वाले और चार वाले, उससे वो ऊपर के सात छह पांच चार तीन और दो सब मिलकर वो असंख्यात गुणे हैं, ये उनका कहना है। इन आगे के योग स्थानों में वो असंख्यात भाग वृद्धि शब्द पहले चाहिए, बाद में संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये चारों वृद्धियां तथा ये ही चारों हानियां संभव है। इसी से इन योग स्थानों में उक्त जीव को अंतर्मूर्त काल तक स्थित कराया है। यहाँ प्रश्न क्या थे कि योग स्थान के ऊपरी भाग में, ऊपरी योग स्थानों में उसके अंतर्मूर्त तक रखा था, क्योंकि योग स्थानों का अंतर्मूर्त काल यही संभव है, यही यानी यही पर संभव है, क्योंकि इसमें योगस्थान इतने असंख्यात गुणा है, इसलिए अंतर्मूर्त तक यहीं पर पॉसिबल है, वो बात ये कहना चाहते हैं। अब यहाँ शंका पूछ रहे हैं, अभी हमने कल 225 कर्मकांड में पढ़ा था, वो पूरा हुआ क्या नहीं जरा देख लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। ऊपरी ऊपर के हाँ, यानी आठ के सेंटर में है वो भी असंख्यात है, परंतु उससे नीचे जितने हैं उससे ऊपर की ओर वाले असंख्यात गुणे टोटल। हाँ, ये योग स्थानों के अवयव वगैरह स्थान देखना था, उसके पहले जैसे अभी हमने यव मध्य देखा, उसको काल यव मध्य कहते हैं, अब दूसरी बात जीव यव मध्य की बात भी हम यहाँ देखेंगे, फिर हम कर्मकांड में देखेंगे। अभी हम 60 पेज पर ही चल रहे हैं अपना। शंकाकार पूछते हैं, नीचे देखो, जोग यव मज्जादो, इस सूत्र का अर्थ कहते समय देखो कहाँ लिखा उन्होंने, पीछे चलो, सूत्र नंबर 28 पेज नंबर 57 पर शंकाकार उसके संबंध में है, शंका उसके संबंध में पूछ रहे शंकाकार, क्या लिखा वहां पर, इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग यवबद्ध के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा, यानी उन योग स्थानों में ही वो घूमता रहा। ये समझ में आई बा? घूमता रहने उतना ही उसका योग होता रहा। अब उस पर शंका पूछ रहे, अभी शंका निकालना 60 पेज पर जो अंत में अंतर्मूर्त तक ऊपर के स्थानों में रहा। अब यहाँ शंकाकार पूछते, जोग जव मज्जादो इस सूत्र का अर्थ कहते समय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा योग यव मध्य संज्ञा वाले जीव मध्य से नहीं, जीव यव मध्य चाहिए, यव शब्द डालो, जीव यव मध्य से ऊपर भी है ना, जोग जव मज्ज सन्निध जीव जव मज्जादो, तो कहते मैं जरा प्राकृत फिर पढ़ती हूँ। एदस सुत्तस अथे भन्नमाने दौवठ्यनयम पड़ुच्च पड़ुच्च ने अपेक्षा जोग यव मज्ज सन्निध, यानी योग यव मध्य संज्ञा वाले बराबर जीव मज्जा जीव जव मज्जादो जीव यव मध्य से बराबर। अभी मैं आगे पढ़ती हूँ हिंदी में से, आगे के स्थान में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा ऐसा क्यों नहीं कहते? जैसा हमने अभी योग यव मध्य कहा इसको काल की अपेक्षा कहते हैं, ऐसे जीवों की संख्या की अपेक्षा भी कौन से स्थानों में जीव अधिक है और कौन से बाजू वाले स्थानों में जीव कम है। यहाँ तो स्थानों की संख्या असंख्यात गुना असंख्यात गुना थी, पर दूसरा एक जीव यव मध्य भी बताया जाता है, उसमें किसी विशिष्ट स्थान पर जीव मैक्सिमम पाए जाते हैं तो उसको कहेंगे, उन स्थानों को जीव यव मध्य कहेंगे। हाँ वही 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 अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से, इनका यही प्रश्न है। तो उसमें उनको अंतर्मूर्त काल तक रखा ऐसा क्यों नहीं कहते, क्योंकि यव मध्य शब्द दोनों के लिए आता है, वो काल यव मध्य है ये जीव यव मध्य है, ऐसा क्यों नहीं कहते? उसका समाधान नहीं, क्योंकि जीव यव मध्य का आगे का स्थान पिछले स्थान से विशेष अधिक है। क्या कहना? आगे के स्थान मध्य से नीचे के स्थानों से मध्य के ऊपर के स्थान विशेष अधिक है, और यहाँ डिफरेंस कितना था? असंख्यात गुणा वाला था, इसलिए वहाँ अंतर्मूर्त रहना पॉसिबल है, और यहाँ ऊपर के स्थानों में इतने लगातार अंतर्मूर्त तक घूमे ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाहते। अतः वहाँ अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहना संभव नहीं है, यानी वो जीव यव मध्य की अपेक्षा नीचे के स्थानों में भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि नहीं पाई जाती, यानी वो काल यव मध्य और जीव मध्य अलग अलग स्थानों पर होगा, सेम नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि जहाँ आठ समय वाले वहीं पर जीव ज्यादा, ऐसा भी नहीं है, वो तो अलग है उसका उसका प्रमाण, वो मध्य अलग पोजीशन पर है, नहीं तो वही अगर स्थान होते काल यव मध्य वही जीव यव मध्य होता तो ये कहने की जरूरत नहीं थी। ख्याल में यही बात, जिन स्थानों में जीव मैक्सिमम पाए जाते हैं वो उत्कृष्ट की ओर हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा नीचे के और ऊपर में थोड़ा विशेष अधिक का ही डिफरेंस पड़ा, भले वो असंख्यात स्थान नीचे भी असंख्यात स्थान ऊपर भी है, काल एवं मध्य में नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान असंख्यात गुणे थे और यहाँ विशेष अधिक हो गए, इसलिए वो ऊपर अंतर्मूर्त तक नहीं रह सकता, ये कहना चाहते हैं। अभी आगे हम पेज नंबर 61 पर आ गए हैं। अब ये यव मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का कथन करने के लिए, यानी जीव यव मध्य क्या है उसको पहले हमको सीखना पड़ेगा। तो प्ररूपणा यहाँ पहले समझाएंगे, फिर इसका समझ कर फिर हम कर्मकांड में जाएंगे बाद में। हाँ, असंख्यात गुण वृद्धि वाली बात वहां नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उस स्थान से असंख्यात गुण वृद्धि होकर वो स्थान शायद नहीं हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो काल एवं मध्य में तो असंख्यात गुणा वो स्थान थे ना, नीचे से असंख्यात गुणा योग एवं मध्य काल योग, काल यानी काल योग, काल की अपेक्षा योग मध्य उसमें तो चारों प्रकार की हानि वृद्धि थी, परंतु उसको उसमें ज्यादा टाइम रखा। तथ्य असंख्य जो गुण वड्डी या भाव, अभी नीचे देखते हैं। ऐसा कोई रूल मत बनाओ, वहां अंतर्मूर्त तक नहीं रह सकता, बस इस अपेक्षा से लिखना है। अंतर्मूर्त तक असंख्यात गुण वृद्धि होती रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। असंख्यात गुण वृद्धि करते करते जाना है उसको, वो अंतर्मूर्त लगातार हो सकती है कहीं पर, परंतु वो नीचे के स्थानों में संभव नहीं है, ऊपर के स्थानों में है। नीचे के स्थानों में होती नहीं, ये नहीं कहा है। यानी आप जो डिराइव करते हो कभी कभी गलत होता है। हाँ, क्योंकि किसी भी स्थान से असंख्यात गुणा वृद्धि होती है। हम कंपैरिजन कहाँ करें, ऊपर के स्थान में रहते हुए केवल होना नहीं है, असंख्यात गुणा वृद्धि इतना ही काफी नहीं है, वो लगातार अंतर्मूर्त होता रहे, ये भी कंडीशन है।
तो नीचे में अंतर्मूर्त रहेगा तो वहाँ पे असंख्यात गुणा वृद्धि कंटिन्यूअसली होगी।
फिर आप डिराइव क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम अपनी ओर से कोई भी रूल नहीं बनाएंगे। वो कितने काल तक रहता है, कहाँ तक जाता है, फिर उसमें योग व्योग मध्य की अपेक्षा नहीं ले लो तो हो सकता है। अभी नीचे के स्थानों में नहीं होता, ऊपर के ही होता है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। जब तक हम रिटर्न नहीं पाए जाते, हम अपनी ओर से कोई रूल नहीं बनाएंगे। बस वहां नहीं पाए जाएगी अंतर्मूर्तक, बस इतना ले लो इसका, क्योंकि हम अपनी ओर से कोई भी स्टेटमेंट करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि केवली तो है हम नहीं, जितना लिखा है उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अभी जीव यौ मध्य को हमको समझना है, इसलिए फिर से ये नया पैराग्राफ है ना। अब जीव यौ मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का कथन करने के लिए हमें जीव यौ मध्य ही मालूम नहीं है, तो ये सब अभी प्ररूपणा करेंगे उसकी। तो प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवाहक, भागाभाग और अल्पभूत, इन छह अनुयोग द्वारों की योग स्थानों में स्थित जीवों को आधार करके प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। अब यहाँ से जीव यौ मध्य स्थानों की बात चलेगी। जघन्य योग स्थान में जीव है, इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सब योग स्थानों में जीव है, ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिए। प्ररूपणा समाप्त हुई। हम जैसे हमेशा सत प्ररूपणा में क्या कहते हैं, वो है इतना सिद्ध करना है। गुणस्थानों की जब हमने बात सीखी थी, ये गुणस्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से यहाँ पर भी, क्योंकि ये सारे जीवों के ही तो स्थान है, तो हर स्थान में जीव है, ये प्ररूपणा हो गई। क्योंकि हमने क्या देखा था, द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग से संगी पंचेन्द्रिय के उत्कृष्ट परिणाम योग तक एक सीधी लाइन में नीचे से ऊपर तक हमने स्थानों को लिखा है, और वो प्रत्येक स्थान एक से दूसरा विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक रूप से है, यानी प्रत्येक स्थान में जीव है, ये हो गई प्ररूपणा। अब दूसरा क्या लिखा था ऊपर, प्रमाण, जघन्य योग स्थान में असंख्यात जीव है, उनका प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणियां है, इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सर्वत्र जीवों की संख्या कहनी चाहिए। ये इनमें जीव, जिन योग स्थानों की बात है, जीव कितने हैं उसमें, कितने असंख्यात, कुछ असंख्यात, उसका प्रमाण बताएंगे अभी। पेज नंबर 61, यानी यहाँ द्विन्द्रिय पर्याप्त से लेकर संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तक के सारे योग लिए, तो उन्हीं जीवों की बात है। उनमें से प्रत्येक स्थान में जीव कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात जगत श्रेणियां हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सर्वत्र जीवों की संख्या कहनी चाहिए। भले सर्वत्र जीवों की संख्या असंख्या जगत श्रेणियां कही है, परंतु उसका प्रमाण क्या है वो अभी बताएंगे। इस प्रकार ये हो गए ना, सर्वत्र जीवों की संख्या कहनी चाहिए। शंका, जघन्य योग स्थान में असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? वो जघन्य योग स्थान किसके है? तो द्विन्द्रिय पर्याप्त को वो जघन्य योग स्थान है। समाधान, इस शंका का उत्तर कहते हैं, प्रत्रांगुल के संख्यात्वे भाग का पेज नंबर 61। देखो ये त्रस जीव कितने हैं उसकी बात बता रहे हैं। प्रत्रांगुल का संख्यात्मा, प्रत्रांगुल किसको कहते हैं मालूम है? अंगुल गुना अंगुल को प्रत्रांगुल कहते हैं, स्क्वायर अंगुल प्रत्रांगुल। तो प्रत्रांगुल के संख्यात विभाग का जगत प्रतर में भाग देने पर, जगत प्रतर यानी जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, उसको जगत प्रतर कहते हैं, उसको डिवाइड करना है प्रत्रांगुल के संख्यात विभाग से। सब योग स्थानों में स्थित त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है, क्योंकि हमने ये जो लाइन बनाई है योग स्थानों की, सारे ही पर्याप्त त्रसों की ही बात है। इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, पूरा योग स्थान अध्वान यानी जो संख्या हमने बताई नीचे से ऊपर तक, जितने नंबर ऑफ योग स्थान है कितने हैं, तो जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। तो वो पूरे उसके तीन जीव गुणहानियों के काल का भाग देने पर असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण यवो मध्य के जीव आते हैं, क्योंकि सब जीवों को यवो मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर तीन गुणहानियों का जितना काल है उतने यवो मध्य प्राप्त होते हैं। देखो इसका अर्थ हम पहले विशेषार्थ पढ़कर देखेंगे, फिर ऊपर आते बाद में 62 पेज पर ही नीचे विशेषार्थ। यहाँ त्रस पर्याप्त संबंधी कुल योग स्थानों में अलग अलग और मिलकर कितने जीव है यह बतलाते हुए सर्वप्रथम जघन्यादि प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या की सिद्धि की, एक एक स्थान की बात बताई और एक एक स्थान में असंख्या जगत श्रेणियां इतने जीव होते ये बात बताई उन्होंने पहले पहले, और उस पर से त्रस पर्याप्त संबंधी सब योग स्थानों के जीवों की संख्या फलित की गई है। यानी सारे जीव कितने हो गए? तो एक एक स्थान में असंख्या जगत श्रेणियां हैं और सभी स्थानों में मिलकर जगत प्रतर का असंख्यात व भाग प्रमाण है। आवली के संख्यात्वे भाग का प्रत्रांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे, आवली का संख्या तो भाग असंख्यात हो जाएगा, क्या कहते हैं?
ये गलत है ना?
एक मिनट ऊपर देख, ऊपर देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो प्रत्रांगुल में भाग दे ऊपर, हाँ ऊपर नहीं हो गए।
आवली का असंख्यात तो भाग असंख्यात है,
असंख्यात है वही तो। शायद उसका भाग देने पर ठीक है, वो छोड़ दो, यानी प्रत्रांगुल का संख्यात्व भाग लेना है। यानी उसको असंख्यात से भाग देंगे तो उसका संख्यात्व भाग आ जाएगा। अभी वो आवली की बात छोड़ दो, वो यानी प्रत्रांगुल के संख्यात्व भाग का जगत प्रतर में भाग देना, इतना ले लो। त्रस पर्याप्त राशि प्राप्त होती है ऐसा नियम है, फिर भी यह राशि जगत श्रेणियों की अपेक्षा कितनी जगत श्रेणी प्रमाण है यह देखना है। देखो क्या कहते हैं, जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय जगत श्रेणी, तब जाके जगत प्रतर होगा। अब यहाँ जगत प्रतर को हमने अंगुल के संख्या के भाग से भाग दिया, तो उसका प्रमाण असंख्या जगत श्रेणी आ गई। तो असंख्या जगत श्रेणी कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसी कितनी होगी, असंख्यात का प्रमाण क्या होगा वो देखना होगा, ये कह रहे। ऐसा मोटा नियम है कि समस्त त्रस पर्याप्त राशि में 3 जीव गुणहानियों के आयाम का भाग देने पर, ये जीव गुणहानी आयाम का अर्थ पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल वो गुणहानी आयाम कह रहे हम, क्योंकि आगे ये कुछ है क्या, इसके लिए गुणहानी आयाम को देखने के लिए जीव स्थान पहले देखना पड़ेगा। अच्छा, जीव गुणहानी आयाम के लिए कर्म कांड निकालो, शायद फिगर से समझाना आसान होगा। ये रेगुलर गुणहानी आयाम वाला, हाँ यहाँ लिखा है कर्मकांड पूर्वार्ध 259 पेज था वहाँ पर, हाँ यह कर्मकांड 45-46 गाथा, वही तो आगे है, क्योंकि मैं जो गुणहानी देख रही हूँ तो योग स्थान की देख रही थी। हाँ ये वो मध्य की बात 244 पर हुई थी अपनी, 45-46, हाँ 246 पेज है यहाँ पर, वहाँ जीव ये वो मध्य समझाया है। देखो यहाँ हम जीव ये वो मध्य में ये गुणहानी वगैरह क्या क्या है उसकी बात यहाँ समझाते हैं। पहले हमने काल यो मध्य लिखा था, अब जीव यो मध्य की बात है, पेज नंबर 246 कर्मकांड, जो हिंदी अपना भाषांतर का यहाँ वाला, वहां से मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनना तो ख्याल में आ जाएगा क्या क्या है। कर्मकांड पेज अपना 246 हिंदी वाला, पहले लाइन से पढ़ती हूँ मैं। जीवों के प्रमाण रूप यव रचना में, पहला कौन सा था, योग स्थान थे परंतु उसमें काल की अपेक्षा लगाई थी, 8 समय वाले 7 समय वाले। अब यहाँ जीवों की संख्या लेना है। ये जीवों के प्रमाण रूप यव रचना में हमने क्या देखे थे, प्रत्येक स्थान में असंख्या जगत श्रेणी इतने प्रमाण वाले जीव है, परंतु असंख्या जगत श्रेणी का भी प्रमाण एक एक स्थान में हो, फिर भी वो हीनाधिक होता है। तो बीच वाले ऐसे कोई विशिष्ट स्थान में जीवों की संख्या मैक्सिमम होगी और दोनों ओर घटती चली जाएगी जीवों की संख्या, यही कह रहे हैं। जीवों के प्रमाण रूप यव रचना में मध्य में जीव बहुत है, ऊपर और नीचे अनुक्रम से विशेष से हीन हीन जीव है, विशेष यानी चय से हीन। कर्मकांड निकालो पेज नंबर 246 पहली लाइन, फिर से जीवों के प्रमाण रूप यव रचना, इसको जीव यव मध्य रचना कहेंगे। मध्य में जीव बहुत है, ऊपर और नीचे अनुक्रम से विशेष से हीन हीन यानी चय से हीन, थोड़ा थोड़ा घटते घटते, यानी प्रति योगस्थान जीवों की संख्या घटती चली है प्रति योगस्थान। वहां हमने क्या देखा था, 8 समय वाले तो असंख्यात योगस्थान थे, अब एक एक योगस्थानों में बात कर रहे अलग से, भावार्थ, जैसे यव नामक अनाज का दाना बीच में मोटा तथा ऊपर नीचे क्रम से घटता घटता होता है, वैसे त्रस पर्याप्त संबंधी परिणाम योग स्थानों में यव आकार में जो बीच का स्थान है वहाँ जीवों का प्रमाण बहुत है। बीच वाले स्थान के धारक जीव बहुत है। उस बीच वाले स्थान से ऊपर के स्थानों में और नीचे के स्थानों में जीवों का प्रमाण अनुक्रम से घटता घटता है।
यहाँ पे जीव यौमध्य और योग यौमध्य उसका सेंटर एक ही जगह पे बताया नहीं।
कैसे होगा उसमें क्या? अभी हमने क्या देखा, योग यौमध्य में नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान असंख्या दूर है, और यहाँ क्या लिखे विशेष अधिक है, वो सेंटर एग्जैक्ट कैसे, वो दोनों सेम कैसे हो गए? नहीं समझे?
नहीं समझ गया।
देखो फिगर निकाल के देखो ना, देखो ये काल योग मध्य, देखो ये उसमें काल योग मध्य में नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान असंख्यात गुणे हुए। अब विशेष अधिक करना है तो उसको
थोड़ा छोटा बनाना है।
हाँ थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, नीचे से ऊपर थोड़ा ही अधिक है, यहाँ असंख्यात गुणा का डिफरेंस था। यहाँ जीवों की संख्या, योगस्थान और जीवों की संख्या।
नहीं मैंने क्यों पूछा, यहाँ पे लिखा है ना,
क्या लिखा है,
परिणाम योग स्थानों में जीव आकार में जो बीच का स्थान है वहाँ जीवों का प्रमाण बहुत है। वैसे त्रस पर्याप्त संबंधी
वो भी त्रस पर्याप्त संबंधी ही थे, उसी लाइन को हम अलग से डिवाइड कर रहे हैं, अलग यो बना रहे हैं। वहाँ अपेक्षा थी कालों की, यहाँ अपेक्षा है जीवों की संख्या की। बीच में एग्जैक्ट सेंटर थोड़ा ही होना चाहिए, एग्जैक्ट सेंटर होता तो दोनों ओर समान स्थान बताते। नीचे से स्थानों से ऊपर के थोड़े अधिक है, ये कहना का ही तात्पर्य क्या है, वो जो अभी जो मध्य बता रहे तो ऊपर की ओर, यदि जो काल योग मध्य की अपेक्षा जो सेंटर बताया था उसमें नीचे और ऊपर जो है वो असंख्यात गुना का डिफरेंस था।
और ये संख्या
हाँ, ये जीव मध्य यव मध्य की आकृति और ये काल यव मध्य की आकृति, ये इसका आठ नंबर इधर है, या जीवों की संख्या 128 है। देखो ये भावार्थ पढ़ते पूरा, जैसे यव नामक अनाज का दाना बीच में मोटा तथा ऊपर नीचे क्रम से घटता घटता होता है, वैसे त्रस पर्याप्त संबंधी परिणाम योग स्थानों में, स्थान तो वही के वही थे जिसमें हमने काल की यव मध्य देखी थी, अब उसको भूल जाओ, अब जीव यव मध्य की रचना उसी में उन्हीं योग स्थानों में बता रहे हैं। तो बीच का स्थान है वहाँ जीवों का प्रमाण बहुत है, पर्टिकुलर जो बीच का स्थान है उसमें जीवों का प्रमाण ज्यादा है। बीच वाले स्थान के धारक जीव बहुत है। मध्यम जो कुछ योग है, यथा योग्य मध्यम, ऊपर की ओर थोड़ा शिफ्ट है इसलिए, नहीं नीचे की ओर शिफ्ट है, नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान ज्यादा है क्योंकि ऊपर वो थोड़ा ज्यादा रहते हैं। उस बीच वाले स्थान से ऊपर के स्थानों में और नीचे के स्थानों में जीवों का प्रमाण अनुक्रम से घटता घटता है। उन स्थानों के धारक जीव क्रमशः घटते घटते पाए जाते हैं। इस प्रकार यह यव आकार रचना है वह नीचे की गुणहानि शलाका से ऊपर की गुणहानि शलाका का प्रमाण कुछ अधिक है। देखो क्या कहना चाहते हैं, सेंटर में ज्यादा है, जैसे हमने 128 यहाँ उन्होंने वही संदृष्टि बनाई, दोनों ओर घटते चले जाएंगे, थोड़ा घटा थोड़ा घटा थोड़ा घटा थोड़ा करते 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 इतना घटा कि नीचे की ओर भी आधे हो गए ऊपर की ओर भी आधे, तो जहां तक जाके आधे होते हैं उसको कहेंगे एक गुणहानि, गुणित प्रमाण में हानि यानी आधे हो जाना, ऊपर की ओर भी आधे हो जाना है, कम हो जाना, तर भी वही बात बताएंगे यहाँ पर, ये उदाहरण लेके पूरी फिगर्स लेके बताएंगे। तो ये नीचे जो आधे आधे कितनी बार हुआ, तो उसको कहें नीचे की गुणहानिशाला का, और ऊपर की ओर आधे आधे कितनी बार हो गया उसको कहेंगे ऊपर की गुणहानिशाला का। मान लेते ना नीचे तीन बार आधा आधा हुआ और ऊपर पांच बार आधा आधा हुआ, तो विशेष अधिक हुआ ना, वो वही कहते हैं। अब देखो 245-46 की टीका जो इन्होंने विशेषार्थ में बाद में लिखी, हम उसको अभी यहाँ से ही पढ़ रहे हैं। यवक है आकार, जीवों की संख्या की रचना। ये योगस्थान तो जो है वो है, अब कहाँ कितने जीव है उसकी अपेक्षा से हम यहाँ रचना देख रहे हैं। रचना में पहले अंकों की सहनानी द्वारा कथन करते, यानी सबसे प्रथम कहेंगे तो हम काल्पनिक संख्या लेकर समझाने के लिए ये आसान होता है, क्योंकि हर जगह कितने जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव है, तो उसमें हम कैसे समझ सकेंगे। तो ये हमारे रोज के जो छोटे छोटे संख्या है उसको लेकर वो समझाना चाहते हैं। वहाँ द्रव्य तो त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण, जो त्रस पर्याप्त जीवों का टोटल प्रमाण है, जो हमने देखा था जगत प्रत्र डिवाइडेड बाय प्रत्रंगुल का संख्यात्वा भाग, उसके बदले यहाँ कितना मान लिया 1422। यानी टोटल द्विंद्रिय पर्याप्त से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जीव टोटल कितने हमने मान लिए, खोटा खोटा माना है, 1422 है, ऐसा मान लो। स्थिति त्रस पर्याप्त जीव संबंधी परिणाम योग स्थानों का प्रमाण 32। क्या कहते हैं, एक एक स्थान में बहुत जीव है ना, तो एक एक जीव के लिए एक एक योग स्थान नहीं कहेंगे। देखो हमने क्या देखा, जघन्य का योग स्थान में श्रेणी के असंख्यात विभाग जीव है, दूसरे स्थान में इतने जीव है, तीसरे स्थान में इतने जीव है, तो जीवों की संख्या तो बहुत है, परंतु योग स्थानों की संख्या इतनी नहीं है, तो उसको कहेंगे स्थिति। तो स्थिति ने एक एक योग स्थान को एक एक स्थिति कही, जिसको निषेक भी कहेंगे। यही बात मैंने उसमें बताई थी ना, नीचे के निषेकों में ऊपर के निषेकों में, उसका वहां अर्थ दिया था पहले, ये बात इसमें आई थी ना, ये अभी स्थिति समझेंगे तो वो बात समझने में भी आसान हो जाएगी। देखो ये स्थिति जिसको हम निषेक कहते हैं, ये कैसे गणित के यहाँ शब्द है, वह कर्म की स्थिति लेते थे तो उसके निषेक बनाते थे, एक एक निषेक में इतने इतने जीव है इस तरह से देखते थे। यहाँ स्थिति किसको कहा, परिणाम स्थानों को स्थिति कह दिया। स्थिति ने वो कितने काल तक रहते, आठ समय चार, वो बात कुछ नहीं, यहाँ पर एक एक योग स्थान को एक एक स्थिति कह दिए। तो द्रव्य किसको कहना, टोटल पर्याप्त त्रस पर्याप्त संख्या को द्रव्य कहा, और स्थिति किसको कहा, टोटल नंबर ऑफ परिणाम योग स्थानों को कहा स्थिति। जैसे हम द्रव्य कर्म की निषेक रचना में क्या देखें, द्रव्य किसको कहेंगे, टोटल कर्म परमाणु, और स्थिति यानी निषेक किसको कहते हैं, वो निषेक का अर्थ बताया अलग और स्थिति का अलग, इसलिए स्थिति ये गणित की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ एक एक योग स्थान को स्थिति कहा। एक एक योग स्थान में अनेक जीव है, कितने योग स्थान है तो 32 है, और 32 में मिलकर पूरे जीव कितने, तो 1422 है। यहाँ तक बात ख्याल में आई, अब आगे गुणहानि आयाम, अर्थात एक गुणहानि में स्थानों का प्रमाण 4, यानी 4 स्थान जाकर वो आधी आधी हो रहे हैं। हमने कर्मों में वो 8 समय की गुणहानि मानते हैं, यहाँ हमने 4 की मान ली। सर्व गुणहानि 8, जिसको नाना गुणहानि कहते हैं, यानी नीचे की ओर और ऊपर की ओर, जैसे मैंने 3 और 5 कहा था वही टोटल कितनी हुई, 8 हो गई। उसमें नीचे की नाना गुणहानि का प्रमाण 3 वही बताया है, और ऊपर की नाना गुणहानि का प्रमाण 5। नाना गुणहानि यानी अनेक गुणहानियां, नीचे की ओर आधा आधा कितनी बार हुआ, आधा तो कि 3 बार, तो उसको कहेंगे 3 गुणहानि, और ऊपर आधा आधा कितनी बार हुआ, तो 5 बार, पर एक गुणहानि का प्रमाण कितने, तो 4। तो 4 अलग अलग योग स्थान जाकर वो आधा हो जाएगा, फिर और चौथे में आधा हुआ और चौथे में आधा हुआ, इस तरह से। पुनश्च नाना गुणहानी प्रमाण दो अंक लिख कर। अब ये टोटल गुणहानियां कितनी है? आठ है, तो उतनी बार दो अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसे अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहते हैं। ये आपस में गुणा करने पर क्या करना है, जितनी नाना गुणहानिया है उतनी बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करो, उसको अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहते हैं। वहाँ नीचे की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण आठ, क्योंकि नीचे और ऊपर अलग अलग उन्होंने काउंट किया है, तो दो गुना दो आठ हो जाती है। और ऊपर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण बत्तीस है, क्योंकि पांच बार दो लिखकर आपस में गुणा करना है, ये बत्तीस हो गया। इस तरह सर्व चालीस है। और उसको ऐड कर दिया, हाँ, वो आठ और बत्तीस को ऐड किया, ऐसे आठ बार उन्होंने आपस में गुणा नहीं किया, क्योंकि नीचे की ओर टेपरेंगे ऊपर की टेपरेंगे, एक ही नीचे से ऊपर तक अगर कंटिन्यूस होता तो सभी गुणिया ने, तो आठ बार दो लिखकर आपस में गुणा करते, वो ऐसा नहीं किया। ये तो चालीस हो गए टोटल। वहां कुछ कम तीन गुना गुणहानी का भाग। अब गुणहानी कितनी मान लिए है देख लो, चार, चार मानिए ना, तो तीन गुना गुणहानि यानी चात्रिक बारह, उसमें से कुछ कम, तो कुछ कम तीन गुना गुणहानि का भाग द्रव्य को देने पर यानी टोटल नंबर ऑफ जीवों को देने पर यव आकार के मध्य में जीवों का प्रमाण आता है। डायरेक्ट हमें मध्य की सेंटर की फिगर मिल जाएगी। गुणहानि आयाम का प्रमाण चार, उसको तीन गुना करने पर बारह हुए। किंचित कम कहने में कहने से इसमें से सत्तावन बटे चौदह चौसठ घटाना, यहाँ समच्छेद विधान से 711 का चौसठवां भाग आ गया, यानी 711 बटे चौसठ उसकी संख्या है, क्योंकि 12 में से उसमें घटाए। इसका भाग सर्वद्रव्य 14/122 को दीजिए। कुछ कम 12 का भाग 14/122 को दिया तब 128 आए। वो फिगर बनाने के लिए उन्होंने उल्टा कैलकुलेट करके वो संख्या निकाली। ये कैसे निकाली, क्या निकाली उसके, नहीं कुछ कम 12 से भाग दिया तो संख्या कितनी आई सेंटर में, 128। यह जीव यव आकार रचना में मध्य का प्रमाण जानना, यानी ऐसा कोई योग स्थान है वहां जीवों की संख्या 128 है, इसका अर्थ समझ में आया। टोटल योग स्थान हमने 32 माने थे, और नीचे चार 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 तीन गुणहानियां और ऊपर पांच गुणहानियां, इस तरह से दोनों ओर हमने देखा था, है ना। तो टोटल ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि 40 थी, परंतु हमारी टोटल गुणहानियां 8 होती है, 8 × 32 टोटल संख्या योग स्थानों की आई थी। तो बीच में सेंटर में जो योग यव मध्य कहना है, कौन सा ये जीव का,
जीव
योग यव मध्य, तो 1422 डिवाइडेड बाय कुछ कम 12 तो 128 आ गए। ये तीन गुणहानि किसको कहना, ये समझने के लिए पहले हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया। जीव यव आकार रचना में मध्य का प्रमाण यह है, इसलिए मध्य में जीव बहुत है ऐसा कहा, यानी किसी मध्यम स्थान में जीव ज्यादा है, यानी उस वो ज्यादा जीवों को वो मध्य वाला कोई स्थान पाया जाता है। उस मध्य के ऊपर तथा नीचे गुणहानि के जो निषेक है उनमें अपनी अपनी गुणहानि में विशेष यानी चय का जो प्रमाण है उतना उतना क्रमशः हीन प्रमाण जानना। क्या कहना चाहते हैं, नीचे की ओर ऊपर की ओर घटते जाते हैं, तो वहाँ जो गुणहानि में चय का प्रमाण है, घटने का प्रमाण है, वैसा वहाँ समझना। विशेष का प्रमाण कितना है, वो चय का यानी कितना घटेगा, प्रतियोग स्थान कितना घटेगा, ये पूछ रहे हैं। अपनी अपनी गुणहानि के प्रथम निषेक को दो गुना गुणहानि आयाम प्रमाण, जो दो गुणहानि उसका भाग देने पर जो प्रमाण हो उतना है। क्या कहना चाहते हैं, अभी हम देखते हैं यहाँ 128 का प्रमाण देखा हमने, और गुणहानि का प्रमाण कितना है? तो चार, यानी चार जाके ये 64 होने वाला है, तो चार बार जाके 64 होगा। एक गुणहानि का प्रमाण कितना है? चार, और दो गुणहानि का प्रमाण कितना है? आठ। तो आठ से 128 को भाग दे दो, ये हमारा पहला निषेक है। 128 पहला निषेक है। दूसरे निषेक में 128 में 8 कम 120 हो गए। तीसरे निषेक में उसमें 8 कम 112 हो गए। सॉरी, दो गुणहानि का भाग देना, सॉरी मैं गलत, दो गुणहानि का भाग देना, अलग अलग 16 आ जाएगा, 16 कम कर देना। मैंने जरा गलत बताया, मैंने दो गुणहानि कम कर दिए, दो गुणहानि से भाग देना 128 को, तो 8 से भाग दिया तो 16 आ गया। 16 को चय कहेंगे, यानी 128 में से 16 कम हो गए। तो दूसरे निषेक में 112 आ गए, उसमें से 16 कम कर दिए, तो उसमें 96 आ गए, और उसमें से कम कर दिए 80 हो जाएगी। हाँ, क्योंकि 128 को पहला निषेक माना है ना हमने, 128 पीछे डालते और 112 से शुरू करते तो 64 तक आते। 128 को पहला नंबर दिया है, इसलिए ऊपर और नीचे की ओर अलग अलग बात होगी। तो देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर वही दिखाते हैं। तो प्रथम निषेक को दो गुणहानि आयाम प्रमाण, जो दो गुणहानि उसका भाग देने पर जो प्रमाण हो उतना है, अथवा अंतिम निषेक को एक अधिक गुणहानि आयाम का भाग देने पर जो प्रमाण हो वह विशेष का प्रमाण जानना, उससे नीचे और ऊपर के गुणहानि का द्रव्य और विशेष क्रमशः आधा आधा जानना। अभी यही दिखाएंगे। ऊपर की पांच गुणहानियों में से पहली गुणहानि के प्रथम निषेक का प्रमाण 128। अच्छा, उन्होंने ऊपर ले लिया, उसको नीचे नहीं घटित करते हुए ऊपर की ओर का वो पहला निषेक लिया, नीचे की ओर का वो अन्य निषेक हो जाएगा। फिर से ऊपर की पांच गुणहानियों में से पहली गुणहानि के प्रथम निषेक का प्रमाण 128, जो सेंटर है उसको ऊपर की गुणहानि का पहला निषेक माना है। उसके जो नीचे का निषेक होगा वो नीचे की गुणहानि का अंतिम निषेक, यानी वो बढ़ते हुए लेना पड़ेगा, या घटते हुए लेना है तो ऊपर की नीचे की ओर काउंट करेंगे 128। उसको दो गुणहानि 8 का भाग देने पर 16 आए, वह विशेष यानी चय जानना। यहाँ तक समझ में आए बात? यानी प्रति निषेक वो घटता है, वो कहना चाहते हैं। इसलिए एक एक निषेक में 16 घटाना है। अंतिम निषेक में से निकाल दो। अंतिम निषेक में एक कम गुणहानि आयाम का जो प्रमाण उतने विशेष घटाने पर आदि निषेक 128, मध्य 112 तथा 96 और अंतिम निषेक 80 ऐसा प्रमाण आया। दोनों ओर से उसको ले सकते हैं कि 128 में एक एक विशेष घटाते चले जाओ, 16 घटाओ, या अंतिम निषेक है उसमें एक कम गुणहानि आयाम का जो प्रमाण, एक कम गुणहानि आयाम कितना है? 3। उतने विशेष घटाने पर आदि निषेक 128, मध्य 112 तथा 96 और अंतिम निषेक 80 ऐसा प्रमाण आया। इन सब का जोड़ देने पर 128, 112, 96, 80 मुह भूमि जोग दले पद गुणिदे पद धनम हो दी। मुख अर्थात अंत, भूमि अर्थात आदि, अंत 80 और आदि 128, इनका जोग यानी जोड़ 208, दले अर्थात आधा 104 हुए, पद अर्थात गच्छ आयाम उससे गुणा करने पर, यहाँ 4 से गुणा करने पर पदधन 416 हुए। क्या कहना चाहते हैं? पदधन सबकी टोटल करनी है, तो क्या करना हमने? पहला और लास्ट उसकी टोटल करनी, उसका आधा करना। तो आधा करेंगे और उसको क्या करना है?
चार
गुना करना, क्योंकि नीचे और ऊपर का आधा करके नहीं, उसका आधा करके एवरेज मिला, तो एवरेज को जितने स्थिति है निषेक है उसको गुणा करेंगे, उसको पदधने टोटल संख्या आ गई, ये 416 हो गए। इस तरह ऊपर की प्रथम गुणहानी का सर्वधन 416 जानना है। यो मध्य के प्रमाण को एक अधिक तिगुणा गुणहानी आयाम से गुणा करके, हमने तिगुणा गुणहानी कितनी थी?
12,
उसको गुणा करके गुणहानी आयाम का भाग देने पर प्रथम गुणहानी के द्रव्य का प्रमाण आता है। डायरेक्ट उन्होंने निकाला, क्या कहा? 128 हमारा यो मध्य है, उसको एक अधिक तिगुना गुणहानी आयाम, गुणहानी आयाम 4 है और 4 × 3 = 12 और 1 = 13 हो गया, उससे गुणा करके गुणहानी आयाम का भाग दिया, यानी 4 से भाग दिया प्रथम गुणहानी के द्रव्य का प्रमाण आता है। निक करके देखो ना, हमने क्या कही? क्या देखा उन्होंने? यव मध्य के प्रमाण को 128 को एक अधिक तिगुना गुणहानी आयाम से गुणा किया। तिगुना गुणहानी आयाम होता है
12
और 1 = 13 हो गया,
तो
और गुणहानी आयाम का भाग दिया ना, डिवाइडेड बाय 4,
13 डिवाइडेड बाय 4,
ऐसा ही है ना? तो संख्या निकालेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 13 × 2 = 24, 416 आ गए ना, ऐसा भी निकाला उन्होंने। ये अलग अलग पद्धति से वो करके बताते हैं, यानी क्या किया उसमें, यव मध्य का प्रमाण 128 था, उसको एक अधिक गुणहानी आयाम यानी 13 से गुणा किया और गुणहानी आयाम 4 का भाग दिया, तो भी वही संख्या आ गई 416। ये अलग अलग पद्धतियां बता रहे हैं। यही आगे भी बताया 248 पेज पर, यही बात बताई 248 पेज कर्मकांड के, यव मध्य का प्रमाण 128 को 3 गुना गुणहानी 12, 1 मिलाने पर हुए 13, उससे गुणा करके गुणहानी आयाम 4 का भाग देने पर 416 आए, वही प्रथम गुणहानी का द्रव्य है। अब देखो गुणहानी गुणहानी प्रति क्या है, जो हमने पहले ऊपर की ओर पहली गुणहानी का द्रव्य देखा 416, ऊपर क्या होता है? द्रव्य भी आधा होगा, चय भी आधा होगा। अब यहाँ 16-16 घटते थे, वहाँ 8-8 घटेंगे, तो टोटल संख्या भी आधी हो जाएगी। हाँ, यही कह रहे अभी। ऊपर एक ही गुणहानी में द्रव्य का प्रमाण तथा विशेष का प्रमाण, विशेष यानी चय, आधा आधा जानना, यानी यहाँ 416 वो 208 हो जाएगा, 208 से फिर इस तरह से घटते चले टोटल। यहाँ पहला निषेक अगर लेंगे, यहाँ 128 का था, वहाँ 64 से शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर 32 से शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर 16 से शुरू हो जाएगी, इस तरह से एक एक निषेक आधा आधा होता है, चय भी आधा आधा होता है, टोटल भी आधी आधी होती है। तो कहते हैं अभी डायरेक्ट उसकी संख्या निकालेंगे ऊपर के। पुनश्च एक कम नाना गुणहानी का जो प्रमाण, ऊपर गुणहानियां कितनी है ऊपर की ओर?
5,
तो एक कम नाना गुणहानी यानी 4, उतनी बार दो अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण हो। पेज नंबर 248, जो पैराग्राफ की चौथी लाइन से फिर पढ़ते, एक कम गुणहानि का जो आयाम प्रमाण, ये ऊपर की ओर की गुणहानि अलग लेना, नीचे की ओर की अलग लेना। ऊपर की पहली गुणहानि का टोटल द्रव्य हमने 416 निकाला, अब ऊपर की कितनी टोटल, अभी एक गुणहानि की तो बात उन्होंने कैलकुलेट की, अभी चार रह गई है ना, तो चार बार दो अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसका भाग प्रथम गुणहानि के द्रव्य को देने पर अंतिम गुणहानि के द्रव्य का प्रमाण आता है। उतने बार आधा आधा करके चार बार और आधा करना है, यही उसका अर्थ है। वहां ऊपर की गुणहानि 5, एक कम करने पर 4 हुए, क्योंकि पहली गुणहानि का तो हमने कैलकुलेट किया इसलिए उसको कम कर दिया, तो 4 बार 2 लिखकर परस्पर गुणा करने पर 16 आए। इसका भाग प्रथम गुणहानि का द्रव्य 416 को देने पर 26 हुए, वही अंतिम गुणहानि का द्रव्य आया। देखो ऐसा नहीं भी करते हम, और यहाँ ऊपर की कितनी 5 गुणहानियां हैं और उसके यहाँ टोटल द्रव्य 128 से लेकर ये 80 तक के 416 था, उसके ऊपर 208 हो गया, उसके ऊपर 104 हुआ, उसके ऊपर 52 हो गए, और उसके ऊपर टोटल द्रव्य 26 हुआ। हाँ है ना, पहले कैलकुलेट करेंगे फिर चार्ट देखेंगे केवल। हाँ कहाँ पर, दूसरी गुणहानि में चय 8 होगा, तीसरी में 4 होगा, चौथी में 2 होगा, 5, क्योंकि चय भी आधा होता है। गुणहानि का प्रमाण उतना रहता है, गुणहानि जो 4 की गुणहानि है, 4 स्थिति के भेद जिसको निशिक भी नाम दे सकते हैं, उतना जाने पर आधा आधा होता है, उसकी बात है। यहाँ योगस्थानों को स्थिति कहा ना, वो नीचे की निषेक के द्रव्य को कम करता है ऊपर, वो बात हमने वहां देखी, वो भी उसमें लगता है अर्थ। अभी हम इसीलिए वो स्थिति निषेक में वहां समझा नहीं पाई थी आपको, वो अभी क्लियर हो रहा है। देखो अब पेज नंबर 248 पर आगे पढ़ रहे हैं। ऊपर की अभी हमने कैलकुलेट किया सब पूरा, पुनश्च नीचे की गुणहानि 3, उनमें से प्रथम गुणहानि में यव मध्य में जो प्रमाण है उसमें से एक विशेष घटाने पर प्रथम निषेक होता है। यहाँ यव मध्य 128, इसमें से विशेष का प्रमाण 16 घटाने पर 112 रहे, वही आदि निषेक का प्रमाण है। अभी नीचे की ओर क्या करना, घटाते जाना है, ऊपर भी घटाते गए थे यहाँ पर भी घटाते जाना है, परंतु 128 को पहला निषेक कहा था, नीचे की ओर 112 को पहला निषेक कहेंगे, और उसमें से फिर चय घटाते चले जाएंगे, उसमें 16-16 घटाते चले जाएंगे। 112 रहे, वही आदि निषेक का प्रमाण है। इसमें से एक एक विशेष घटाने पर अंतिम निषेक में एक कम गुणहानि आयाम प्रमाण विशेष घटाने पर 64 होते, वो निषेक शब्द आया ना यहाँ पर, निषेक किसको कहा यहाँ, योगस्थानों को, और ये संख्या जो द्रव्य की बात है वो क्या है, जीवों की संख्या है, ख्याल में आती बात। यहाँ निषेक किसको, एक एक योगस्थान को एक एक निषेक कहा है। तो इसमें से एक एक विशेष घटाने पर अंतिम निषेक में एक कम गुणहानि आयाम प्रमाण विशेष घटाने पर 64 होते हैं, क्योंकि 12 हम 16-16 घटा रहे हैं, तो 3 बार 16 घटाना है, 4 ही तो निषेक है, पहला निषेक तो 112 है, और 3 बार घटा दो तो 48 घटा दो तो 64 लास्ट वाला आ जाएगा। यहाँ मुख 64, अब इसके जोड़ देना है, क्या करना, 112 प्लस 64 करेंगे, उसका आधा करेंगे और 4 से गुणा करेंगे, यानी क्या करते हैं, हम पहले एवरेज निकालते हैं और जितने निषेक है उतने गुणा करते हैं, तो यहाँ मुख 64, भूमि 112, इनको जोड़ने पर 176, इसका आधा 88, इसको पद 4 से गुणा करने पर 352 हुए। वही नीचे की प्रथम गुणहानी का द्रव्य जानना। अब नीचे की ओर भी जितनी गुणहानी है, एक गुणहानी तो बता दी, अब तीन है तो उसमें से एक गई तो दो रही, तो दो बार दो को गुणा करेंगे, चार से उसको भाग देंगे हम, तो कहते हैं 88, इसको पद 4 से गुणा करने पर 3, ये हो गया। यो मध्य 128 को 11 से गुणा करके 4 का भाग देने पर इतना प्रमाण होता है। ऊपर हमने क्या किया था, 128 को 13 से गुणा किया था और 4 का भाग दिया था, एक अधिक तिगुना गुणहानि दिया था, और यहाँ एक कम तिगुना गुणहानि लेना है। समझ में आती है बात? यहाँ क्या लिखा देखो, यो मध्य 128 को 11 से गुणा करके 4 का भाग दिया, ऊपर की ओर के हमने क्या किया था टोटल? ऊपर की ओर क्या किया था, 13 को गुणा करके 4 का भाग दिया था, यहाँ 11 से गुणा करके 4 का भाग दिया,
एक कम किया।
हाँ, ऊपर की प्रथम गुणाने के द्रव्य से यहाँ यव मध्य को दो गुणा करके, दो गुणा करेंगे तो 256 आ जाएंगे, 4 का भाग दीजिए, इतना ऋण जानना। देखो क्या कहना, ऊपर की गुणहानि कितनी थी टोटल 416 की, अब नीचे की कितनी हुई अभी देखा ना, 352, यानी 416 में से 352 गए, तो डिफरेंस कितना आया, 64 का आया, यही कहना चाहते हैं। ऊपर की पहली गुणहानि में और नीचे की पहली गुणहानि में डिफरेंस कितना है, तो 64 का है। यानी यो मध्य को दो गुणा करके 4 का भाग दिया, उतना यहाँ ऋण है। यो मध्य 128 को दो गुणा करके 4 का भाग देने पर 64 आए, उसे ऋण जानना। इतना ऊपर की प्रथम गुणहानि के द्रव्य में से घटाने पर नीचे की प्रथम गुणहानि का द्रव्य आता है। अब ये पूरा हिसाब करने के लिए, हाँ, ये दूसरे में कितना घटेगा, तीसरे में, ये पूरा ही ये सब बताएंगे। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ 250 पर चार्ट देखेंगे, ये बीच वाला डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे। देखो आप पढ़ लेना घर में ये पूरा, देखो अभी ये पेज नंबर 250, ये नीचे का चौथा कॉलम या ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5वां कॉलम देखो, जिसमें ऊपर की पहली गुणहानि लिखी है, मिला, सेंटर में है। देखो ऊपर की पहली गुणहानि जहाँ विशेष का प्रमाण 16 लिखा था, 250 पेज ब्रह्मा, हाँ, वहाँ 128, 112, 96, 80 और उसकी टोटल है 416। ऊपर की दूसरी गुणहानि में वो आधा आधा हो गया, विशेष का प्रमाण भी और एक एक निषेक का प्रमाण भी और टोटल भी, तो 208, 104, 52 और 26 हो गए, टोटल हो गए। परंतु अंतिम गुणहानि में कैसे 8, 7, 6 और 5 तक जीवों का प्रमाण हो गया। अब नीचे की ओर देखो, नीचे की पहली गुणहानि में अभी वहाँ 112 से शुरू करके घटते घटते 64 तक आ गए, तो यहाँ 352 हो गए, यानी ऊपर के जो देखे थे उससे 64 कम है। नीचे की दूसरी गुणहानि में अभी ऋण का प्रमाण भी आधा हो गया, तो जो 176 टोटल है तो 32 कम है, ऊपर के 208 से यहाँ 32 कम है। नीचे की तीसरी गुणहानि तो उसमें अवशेष 88 नहीं, टोटल 88 होता है, परंतु इसमें 16 कम है। यानी ऊपर और नीचे की टोटल करनी है तो उसमें से ऊपर की जो संख्या है उतने डबल करो और उसमें से उसका ऋण माइनस कर दो। ये उसका प्रमाण निकालने का तरीका है। यहाँ तो 3 ही है संख्या या 5 ही है, ओरिजिनल में असंख्यात होती है, इसलिए ये तरीका बताया उसका। अब थोड़ा वहां से पढ़ेंगे क्योंकि गुणहानि क्या है वो हमको जानना था, वो निकालना अभी। 61 पर थे हम। जीव एव मध्य की बात हमने पहले प्ररूपणा फिर प्रमाण। प्ररूपणा में क्या देखा हमने, वो त्रसों के जितने पर्याप्तों के योग स्थान है उसको हम सिंगल लाइन में लिख दिए, जो टोटल नंबर ऑफ योग स्थान है उसी को यहाँ स्थिति कही थी। और एक एक योग स्थान में बहुत सारे जीव होते हैं, कितने असंख्य जगत श्रेणी प्रमाण, फिर भी उनका प्रमाण हीना दिखे। बीच वाले कोई किसी पर्टिकुलर स्थान में जीवों का प्रमाण मैक्सिमम है और दोनों ओर वो घटते जाता रहता है, थोड़ा थोड़ा घटता होता है, तो कहीं ऊपर की ओर भी घट के आधे हो गए, फिर उससे आधे हो गए, उसके आधे हो गए, उससे आधे हो गए, उसको कहेंगे 5 बार नहीं असंख्यात बार होगा तो उसको कहेंगे ऊपर की गुणहानिया, कितनी बार आधा होगा। नीचे की ओर भी कितनी बार होता है उसको कहेंगे नीचे की गुणहानिया, पर नीचे की जितनी टोटल है उससे ऊपर की विशेष अधिक है, बस इतना ही लेना है इसमें। अब यहाँ ये प्रमाण बताया उन्होंने श्रेणी ने, पर हमने शंका समाधान देख रहे थे पेज नंबर 61 लास्ट वाला बधवला, पेज 61 लास्ट वाला समाधान पढ़ने हैं। प्रश्न क्या पूछा था, जघन्य योग स्थान में भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, ये कैसे जाना, उसका उत्तर कहते हैं। देखते प्रतरांगुल के संख्यात वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने पर, मैं ये फिर पढ़ रही हूँ, सब योग स्थानों में स्थित त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है। यानी प्रतरांगुल जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय संख्यात, इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के, समस्त योग स्थान अध्वान जिसको हमने स्थिति भी कही थी, यह निषेक कहा था, यानी टोटल नंबर ऑफ योग स्थान तो उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण 3 जीव गुण हानियों के काल का भाग देने पर, यानी 3 गुणहानि हमने देखी ना, पहले हमने कुछ कम 3 गुणहानियों का भाग दिया था 1422 को अपने इस गणित में, ऐसे भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण ये वो मध्य के जीव आते हैं, क्योंकि हमने वो 128 का प्रमाण कैसे निकाला था 1422 को कुछ कम 12 से भाग दिया था। अब यहाँ यव मध्य में जीवों का प्रमाण कैसे निकालना है, तो जो टोटल त्रस पर्याप्त जीव है उसको 3 गुणहानियों से भाग दो तो उसका प्रमाण कितना आता है, तो असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण आता है, यव मध्य के जीव आते हैं, क्योंकि सब जीवों को यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर 3 गुणहानियों का जितना काल है उतने यव मध्य प्राप्त होते हैं। देखो इसका अर्थ समझते हैं, हम जो संदृष्टि देखी थी उसमें हम देखते हैं टोटल जो जीव है वो हमने कितने माने थे 1422, ये 1422 थे हमारे समस्त योग स्थान अध्वान। हाँ सब योग स्थान है नी 1422 था। तीन जीव गुणहानियों का प्रमाण कितना था?
12
तीन गुणे 4 एक गुणहानि 4 की थी। उसका भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण यव मध्य के जीव आते हैं, हमने 128 आते ऐसा देखा था, है ना? क्योंकि सब जीव, अभी आगे के लाइन का हमको अर्थ देखना है, सब जीवों को, सब जीव कितने माने हमने? 1422 यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर, यानी 128 का एक यूनिट बना दो तो ऐसे कितने आएंगे? तो 1422 डिवाइडेड बाय 128 तो कितना आएगा? कुछ कम 12 यानी 3 गुना नहीं आएगी। इसका अर्थ है सब जीवों को, यानी 1422 को पेज नंबर 62 यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर, वहां आंकड़े लिखो तो आपको समझने में आसान होगा। 62 पेज पर पहली लाइन है ना, असंख्या जगत शरीर में यव मध्य के जीव आते हैं, यव मध्य के जो 128 हमने मान लिए थे हमारी संदृष्टि, क्योंकि सब जीवों को यानी 1422 को यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर, यानी 128 के प्रमाण से करना, यानी 128 का एक यूनिट बनाएंगे तो 1422 में ऐसे कितने हो गए? तो 3 हो गए कि? तो कहते 3 गुणहानियों का जितना काल है उतने यव मध्य प्राप्त होते हैं, यानी 12। अभी वो कुछ कम 12 समझ लेना, संदृष्टि है ना। अब कहते हैं, अब आगे का प्रोसेस बना रहे, पिछली गुणहानि नाना गुणहानि शलाओं का विरलन कर, पिछली नाना गुणहानि शला का है 3, उनका विरलन कर द्विगुणित करने पर अन्योन्य अभ्यस्त राशि होती है, यानी 2 × 2 × 2। हाँ हाँ बोलो शोभा, हाँ बोलो शोभा, शोभा सुनाई दे रहा है?
कट हो गए,
हाँ मैं बोल रही हूँ कब से, सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो लगाइए फिर। देखो पिछली नाना गुणहानी शलाकाओं का विरलन करें, यानी 3 का द्विगुणित करने पर, विरलन करने यानी 2 × 2 × 2 लिखना, अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है, परस्पर गुणा करने पर 8 आ जाएगी। इससे 3 गुणहानियों को गुणित करने पर, तीन गुणहानी यानी 12 × 8 योगस्थान काल असंख्यात गुना होकर भी जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग होता है। हाँ, उसका ये इसको योगस्थान काल कहा, त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योगस्थान से जीव आते हैं। हाँ सुनाई दे रहा है क्या अभी?
हाँ अभी सुनाई दे रहा है।
हाँ देखो पेज नंबर 62 की बात चल रही है, ऊपर हमने 2 लाइन देखी थी, अभी तीसरी लाइन में लास्ट में देखते हैं, आधे में पिछली नाना गुणहानि शलाका, यानी नीचे की गुणहानि शलाका 3 है, वहां 3 लिखो, उसका विरलन करना है, एक 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 3 बार लिखना। हाँ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, द्विगुणित करना यानी 2 × 2 × 2 अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है, इसके 2 × 2 × 2 करना और अन्य, इससे 3 गुणहानियों को गुणित करने पर योगस्थान काल असंख्यात गुणा होकर भी जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग होता है, उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योगस्थान स्थित जीव आते हैं।
ये जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग तो टोटल नंबर ऑफ योगस्थान है, योगस्थान कितने टोटल श्रेणी का संख्या?
सुनो जरा, तीन गुणानियों को गुणित करने इससे अन्योन्य अभ्यस्त राशि से तीन गुणानियों को क्यों गुणा किया?
12 से 8 को गुणा किया, ऐसे ही बता रहे हैं ना?
योगस्थान काल क्यों का?
वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि तो योगस्थान काल का
काल की बात नहीं है। देखो ऊपर बिरलीय द्विगुणीय अन्न नब्बत्तर आसीना तीन गुण हानियों गुणी दे। असंख्य गुणों उसका अर्थ देखना पड़ेगा मुझे कल, यहाँ ये बात फिर कल पढ़ेंगे यहाँ से। उसका अर्थ जो है कुछ अलग से है।
टोटल योगस्थान कितने श्रेणी का संख्या होगा?
हाँ
बराबर है, तो ये तो बताया, पर ये नहीं समझ में आया जोकर ठाणा 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 दो।
देखो टोटल नंबर कितने हैं जगत प्रतर का संख्या तो भाग, और एक एक स्थान में कितने जीव है उसकी बात है, असंख्यात जगत श्रेणियां है, ये इसका कल देखेंगे अर्थ। आप भी पढ़कर आना, हम भी पढ़ करेंगे, ये 62 पेज पर से वहीं से ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकन सदा देत होड़ो। मयंग मयंग।